السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين يا رب العالمين. أجمع إن شاء الله تعالى سورة البينة، سورة الزلزال اور سورة العاديات، یہ تین سورتیں کریں گے، تو دیکھتے ہیں.
سورة البینہ، بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، بعض کہتے ہیں مکی سورت ہے. اس میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی سورت ہے. بارکیف اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت روایت آتی ہے کہ جب یہ سورت اتری تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کا آپ کو حکم ہے کہ یہ سورت حضرت عبی بن کعب کو سنائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن کعب کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں آپ کو یہ سورہ سناؤں. تو حضرت عبی بن کعب نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عبی بن کعب رونے لگے، اللہ نے میرا نام لیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ بھی کتنا بڑا آنر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا نام لے اور پھر اپنے نبی سے فرمائے کہ آپ ان کو سنائیں یہ سورہ. تو اس کی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں عبی بن کعب تو مدینہ میں تھے. اور لیکن حضرت عائشہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ یہ سورت مکی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہو کہ آپ عبی بن کعب کو سنائیں، لیکن وہ یہ پہلی دفعہ یہ سورت نہیں اتری ہو، یہ سورت اتر چکی ہو پہلے. واللہ عالم. باہر کیا سورہ کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ بینہ جو ہے نا، یہ لفظ یہ اس سورہ میں ہی آیا ہے، اور بینہ کا مطلب ہوتا ہے کلیئر پروف، ایسی یعنی ایسا پروف، ایسی بات، ایسی کلیئر ایویڈنس جس سے حق اور باطل بالکل الگ الگ ہو جائیں، کوئی کنفیوژن نہ رہے. سمجھ آئی بات؟ جو دوسرے کو عاجز کر دے نا کہ اب دوسرا کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میں نہیں مانتا، اب یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اتنی واضح چیز ہے. جیسے آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے، دوسرا آپ کے سامنے رکھ دے، یہ لکھو، یہ دیکھو، اب یہ تمہارے سامنے، اب آپ کیا کہیں گے؟ اب تو آپ سپیچ لیس ہو گئے، کیونکہ اب آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ بینہ کہتے ہیں ایسی کلیئر پروف کو، ٹھیک ہے. اور اس صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا. اب آپ نے سورہ علق میں پہلی وحی کے بارے میں پڑھ لیا، القدر میں آپ نے کہ قرآن کب اترا، اور اس میں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دے کے بھیجا ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ مشکل ترین سورتوں میں سے ہے تفسیر کے اعتبار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کن میں سے کفر کیا؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اہل کتاب میں سے بھی تو تھے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ ہم نہیں مانتے، یہود تھے، جبکہ ان کے پاس کلیئر ایویڈنس آ چکی تھی. والمشرکین، اور مشرکوں میں سے. منفقین، باز آنے والے. فا کیف، کیف بھی اس کا روٹ بتایا گیا، اور ویسے اس کا نام مطلب فقہ کہتے ہیں، الگ الگ کرنے کو، جدا جدا کرنے کو، تو علیحدہ کرنے کو. تو یعنی وہ علیحدہ نہیں ہونے والے تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جاتی ان کے پاس بینہ. یعنی یہ اہل کتاب اور مشرکین میں یہ باز نہیں آنے والے تھے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی دلیل لا کے دیں. بغیر دلیل کے تو انہوں نے اپنے شرک سے باز نہیں آنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کلیئر دلیل دے دی، بینہ دے دی. بینہ کیا ہے وہ اگلی آیت میں آئے گا، لیکن یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں نے اپنے کس چیز سے باز نہیں آنا تھا، کس سے علیحدہ نہیں ہونا تھا، اپنے شرک سے، اپنے کفر سے، ये तो मुशरिकीन शिर्क कुफर में थे, अहले किताब भी इस चीज से कि हमने नहीं मानना जो अपनी हठधर्मी थी, इससे बाज नहीं उन्होंने आना था जब तक इनके पास बयना ना आ जाती, वाजे कोई चीज ना आ जाती। अल्लाह ने वाजे चीज उतार दी और वो बयना क्या है, रसूल मिनल्लाह यतलू सुहुफम मुतहरा, एक रसूल अल्लाह की तरफ से, यतलू जो पढ़ता है, सुहुफन सहीफे मुतहरा, मुतहरा कैसे है पाकीजा, तहारत भी इसी से है ना, तोहर भी इसी से है, यानी ऐसे पाकीजा जिनको हाथ लगाने वाले फरिश्ते हैं, शैतान नहीं है, शैतान इसके करीब नहीं आ सकता, फरिश्ते हैं, इसीलिए पाक लोगों को ही इसको छूना चाहिए, यानी जब इंसान पाकी की हालत में हो तभी उसको छुए, और अगर औरत है से या तो फिर कोई कपड़ा या कोई ग्लव पहन के इसको छुए, क्योंकि इसको छूने वाले अल्लाह ताला ने फरमाया पाकीजा ही है। तो अलबीना क्या है, रसूल अल्लाह की तरफ से जो पढ़ता है, सुहुफ मुतहरा, इसका मतलब है बयना रसूल भी है, क्योंकि रसूल की जिंदगी बयना थी, कोई कह ही नहीं सकता था कि इसके अंदर कोई ऐसी बात है, ना ये झूठे हैं, ना ये फरेबकार हैं, बल्कि लोगों ने तो खुद कहा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा खड़े होकर पहाड़ पे बात की थी, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से कोई लश्कर आ रहा है तो तुम क्या मेरी बात मान लोगे, सब ने एक जुबान कहा था हाँ हम मान जाएंगे। रसूल की अपनी जिंदगी इस बात की गवाह है, वो तो खुद बयना है, वो तो खुद एक दलील है कि आप सच्चे हैं, आप जो आप बात लेकर आ रहे हैं वो सच्ची है, और ये सहीफे, ये जो कुरान है, ये बयना है, ये एक वाज़े दलील है, ये एक ऐसा मौजज़ा है जो इंसान को स्पीचलेस कर दे, और वाकई वो इसके आगे कुछ बोल नहीं सकते थे, ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई तोड़ था इस कुरान का कि वो आगे से ले आते कि हम भी एक कलाम बना के ले आए, हम हमारे पास भी इसके जवाब में बातें हैं, वो इसीलिए तो वो जादू कह देते थे वो, क्योंकि बेबस हो गए थे ना, बयना होती वो क्लियर वाजे दलील है जो इंसान को बेबस कर दे, अब वो आगे से कुछ भी नहीं कह सकता, क्या कहेगा फिर, वो उल्टे सीधे कभी जादू कभी फलां कभी कुछ, कुछ ना कुछ अपनी तरह से बना बना के बातें ला रहे थे, मगर उनकी बातों में कोई बेस नहीं थी। फीहा कुतुबुन कय्यिमा, इसमें कुतुब है कय्यिमा, कुतुब का माना यहाँ पे क्या है, यानी इसमें अहकामात है, आपने देखा ना कुतुब, हमने क्या कतब अल्लाहु लकुम है ना, कुतिबा अलैकुम, तो जब कुतिबा आता है तो फिर क्या होता है, फर्ज कर दिया गया, यानी इसमें अहकामात हैं जो फर्ज किए गए हैं, जो दुरुस्त हैं, जो सीधे हैं, यानी इसमें ऐसे कय्यिमा कहते हैं ना, कामा, कामा कहते हैं खड़े होने को, तो कय्यिमा उसी से है, यानी सीधा मुस्तकीम वाजे, जब इंसान खड़ा होता है तो सीधा होता है ना, तो यानी इसमें ऐसे अहकामात हैं जो बिल्कुल सीधे हैं, वाजे हैं, और वैल्यूबल होने की तरफ भी इशारा मिल जाता है ना आपको, कि यानी ऐसे अहकामात हैं, तो इस कुरान में वो अहकामात हैं जो बिल्कुल सीधे हैं, फिर भी हमारे कुछ लोग इनके अहकामात को समझते हैं कि नहीं ये तो इनमें तो कोई ऐसी बात है जो अप्लाई हो ही नहीं सकते, हालांकि कय्यिमा तो कहते ही उसको जिसमें कोई क्रुकेडनेस ना हो, जिसमें कोई टेढ़ हो ही ना, सीधा हो बिल्कुल, फिर भी अपने मुसलमानों को ही नहीं समझ आते ये अहकामात। और दूसरी फीहा कुतुबुन कय्यिमा का माना एक और भी लिया है उलमा ने, फीहा कुतुबुन कय्यिमा यानी इसमें जो मैसेज तौरात और इंजील में था वो ही इसमें भी है, कुतुब का माना अगर इसी तरह लिया जाए ना कि कुतुब है इसमें कय्यिमा, यानी बिल्कुल उनके उन कुतुब के जो मसाइल थे, जो उनकी बेस थी तौहीद, वो इसमें भी है। वमा तफरकल्लदीन उतुल किताबा इल्ला मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिना, इन्होंने नहीं तफरका किया, इन लोगों ने फिरका फिरका नहीं हुए आपस के अंदर, ये फटे नहीं, कौन अल्लादीना उतुल किताबा, वो लोग जिनको दी गई किताब, अब यहाँ पे मुशरिकीन का नहीं जिक्र आया, उतुल किताबा मैं बताती हूँ क्यों, इल्ला मगर मिम्बादी मा जात हुमुल बय्यिना, कि इनके पास जब वाजे दलायल आ गए उसके बाद इन्होंने तफरका किया, यानी जब उतुल किताब के पास, जो किताब दिए गए अहले किताब के पास, जब बयना आ गई, जब उनका रसूल आ गया, जब अल्लाह का कलाम आ गया, उसके बाद इन्होंने तफरके करने शुरू कर दिए। होना क्या चाहिए था कि जब किताब आती तो सब एक हो जाते, लेकिन फिरके फिरके बन गए। मुशरिकीन ऐसे थे ही नहीं, क्योंकि मुशरिकीन में तो कोई तफरका नहीं पड़ा, इसलिए क्योंकि उनके पास तो ना कोई किताब आई ना कोई रसूल आया। इनके ऊपर अल्लाह ताला का गजब ज्यादा है। वजह क्या है? जब किसी के पास किताब आ जाती है और फिर उसके बाद वो अपनी यानी और चीजें निकाल के और कोई अपनी किसी तकब्बुर की वजह से, किसी हसद की वजह से, किसी वजह से आपस में फट जाते हैं, फिरके फिरके हो जाते हैं, हक को नहीं मानते, तो अल्लाह ताला का गजब उन पे ज्यादा है। क्योंकि तुम्हारे पास तो बैना आ गई, फिर तुम ऐसे कर रहे। देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों के 71 फिरके, ईसाइयों के 72 फिरके, मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे। 73 क्या इनके पास बैना नहीं आई? आई है। और इनके पास क्या नहीं रसूल आया था? आया था। रसूल की बात भी महफूज, कुरान भी महफूज, इसके बावजूद 73 फिरके हो जाएंगे और सिवाय एक के सब जहन्नुम में जाएंगे। लोगों ने पूछा वो एक कौन है? फरमाया वो जो उस पर हो जिस पे मैं और मेरे सहाबा हैं, इस पे हो। और आज देखें कितने फिरके हैं, इतने फिरके हैं कि मतलब आप भांत भांत की बोलियां आप इंटरनेट पे देख लें, तरह तरह के गुमराह कुन फिरके आए हुए हैं। लोगों को किस तरफ को लेकर जा रहे हैं, दीन की बात क्या है और वो किधर को लोगों के रहनुमाई कर रहे हैं, समझ लें। वो उलमा हैं जो कि जहन्नुम के दरवाजों पर खड़े होंगे, आपने फरमाया था ना, लोगों को जहन्नुम की तरफ बुला रहे होंगे, ऐसे उलमा आएंगे। और वाकई ऐसे हैं। फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं वो भी तो आलिम है ना। भाई आलिम है तो खुद भी तो आंखें खोल के देखोगे, वो कुरान और सुन्नत और हदीस के मुताबिक भी कोई बात कर रहा है या अपनी ही कोई बातें कर रहा है? आप ऐसे नहीं ट्रस्ट कर सकते किसी को भी। ये दीन ईमान की बात है, ये सबसे वैल्यूबल चीज है और वैल्यूबल चीज को इंसान बड़ी संभाल के रखता है। हम अंधाधुंध चल पड़ते हैं, वो जो उन्होंने कह दिया, फलाने आलिम ने कह दिया। तो अब क्या हुआ था अहले किताब के साथ? अहले किताब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि एक नबी आए हैं जिनके पास हमारी किताब का इल्म हमसे भी ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में उनको तो मान जाना चाहिए था ना। लेकिन मानते तब अगर उनके अंदर कोई आजी होती, उनके अंदर पैदा हो गया हसद कि इनके पास इल्म है और हमारे से ज्यादा इनके पास इल्म हो गया और वो आपके खिलाफ हो गए और ये बनी इस्माइल में से हैं, बनी इसहाक में से नहीं है, इस पे हसद पैदा हो गया, इसकी वजह से वो नहीं माने। अक्सर ये होता है और आज मुसलमानों में भी ये बहुत कॉमन है कि जब कोई देखते हैं ना कि एक कोई इल्म वाला है मसलन, वो देखता है कि कोई मुझसे ज्यादा इल्म वाला आ गया ना, तो भी हसद पैदा हो जाता, फिर भी उसके इस खिलाफ नेगेटिव बातें शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं ना होता, ये मुझसे ज्यादा इल्म वाला तो अब इसको मैं कैसे पीछे करूं, कैसे काटूं इसको, उसको काटने के लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा। आपको पता है बुखारी, इमाम बुखारी जो थे, उनकी जिंदगी के जो आखिरी अय्याम थे, वो अपने इलाके में वापस चले गए, जहां जहां से इल्म लिया था वापस गए। जब उनका बड़ा वहां पे इस्तकबाल हुआ, उनके बड़े मशहूर हो गए थे, तो बहुत से जो दूसरे उलमा थे वहां पे, वो तो जेलस हो गए क्योंकि उनके शागिर्द उनको छोड़ छोड़ के बुखारी के पास जाने लगे। अब जैसे आपके इलाके में कोई आ जाए, कोई बड़ा आलिम आ जाए, तो जो छोटे छोटे लोग हैं जो पहले कोई दर्स करते थे, कोई करते थे, सब उनसे छोड़ के वो बड़े आलिम के पास चले जाए, तो अब वो जो जिनके पास पहले लोग जाते थे, उनको तो ये लोग सारे छोड़ छोड़ के हमें जा रहे हैं, अब वो उनके बारे में नेगेटिव बातें शुरू कर दें, नहीं ये तो ऐसे हैं, ये तो ये हैं, ये तो इसी तरह उन लोगों ने भी शुरू कर दी। और ऐसा नेगेटिव प्रोपोगंडा, ऐसी अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी इमाम बुखारी के बारे में, कि जिससे उनके ऊपर बड़ी सख्ती आई, उनको बड़ी मतलब बड़ी उनको इजा उनको मिली, तो उन्होंने सोचा कि मैं बस अब ये इलाका छोड़ के चला जाऊंगा। और जब वो जाने वाले थे ना, तो उसी में उनकी वफात हो गई। तो ये जो जेलसी होती है ना, ये ग्रुप्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, फिरकों में कि ये क्यों आ गए हैं, ये अब करेंगे, ये भी बहुत ही तकलीफ दे चीज हो जाती है कि ये भी आपका इखलास खत्म कर देती है। इसका मतलब अल्लाह के लिए तो नहीं है ना। इसी वजह से आपको पता है बाज़ उलमा कहते हैं कि आप एक शेख के पास जब बैठे, एक आलिम के पास बैठे, तो आप दूसरे उलमा की तारीफें ना करें, ये ना हो कि उसमें कोई जलसी पैदा हो जाए और वो अपना बेड़ा गर्क कर दे। तो इनके पास क्या ये तफरके तफरके हो गए, जबकि होना क्या चाहिए कि जब किताब आ जाए, जैसे सूरह आले इमरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिनके पास वाज़े बयिनात आई और फिर उसके बाद उन्होंने इख्तलाफ किया और तफरका तफरका हो गया। आज भी अगर इखलास आ जाए कि अल्लाह की खातिर करना है तो फिर ये तफरके ना हो। लेकिन आज क्या है, आज आपस के अंदर क्यों फटे हुए हैं, आज ये आपको इतने फिरके क्यों नजर आ रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ एक है कि बस मेरी दुकान चमके, हम ऊपर हों या हमारे उस्ताद या हमारा फिरका या हम, बस यही सब आगे होना चाहिए, इस वजह से ये आपको इतने फिरके नजर आते हैं। अदरवाइज अगर सब एक कुरान की रस्सी को पकड़ लेना तो ये इस तरह के तफरके पैदा ना हो कि दूसरे को काफिर कह रहे हैं, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, कोई, हाँ इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ राय में कुछ हर्ज नहीं है और इख्तलाफ राय होना एक नेचुरल बात है, सहाबा के दरमियान भी हुआ था, लेकिन उसकी वजह से ये जो फिरके फिरके बन जाना है, एक दूसरे को काट रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। वमा उमीरू, और नहीं वो हुक्म दिए गए इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, क्या इनको कोई मुश्किल बात का हुक्म दे दिया गया, नहीं, वो तो सिर्फ इतना हुक्म दिए गए कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और इखलास के साथ करो, मुखलिस होते हुए उसके दीन को लो, खालिस करते हुए, मुखलिसीना लहुद्दीन, लिए उसके दीन को, यानी सिर्फ अल्लाह की खातिर दीन के लो और इखलास हो तुम्हारे अंदर, सिर्फ इतना ही तो सवाल किया गया था, सिर्फ इतना ही तो इनसे डिमांड थी, कोई और ऐसा मुश्किल मुतालबा तो नहीं था जो इनसे पूरा नहीं हो सकता था और ये फिरके फिरके बन गए। यानी इबादत क्या है, इबादत है अल्लाह की गुलामी मोहब्बत के साथ, अल्लाह ताला की गुलामी करना, उसकी बंदगी करना, 24/7 जिंदगी में अल्लाह ताला की फरमा बरदारी, उसकी गुलामी, उसके आगे बिछना और पूरी मोहब्बत के साथ, आजी के साथ, ठीक है। इबादत सिर्फ ये नहीं, हम सब इबादत का नाम समझते हैं तो हम सोचते हैं इबादत मीन्स नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये बस इबादत है, नहीं, इबादत पूरी जिंदगी को अपने अंदर, ये इसका मफहूम सिर्फ चंद एक चीजें नहीं है, वो भी इबादत के रिचुअल्स हैं, मगर ये सिर्फ आप इबादत को ये नहीं कह सकते कि ये इबादत है, इबादत तो गुलामी है अल्लाह की। लेकिन गुलाम आपने देखा ना, बाज गुलाम ऐसे भी होते हैं अपने, बाज क्या, अक्सर आप गुलामों को देखें अपने मालिकों से नफरत करते हैं, लेकिन ये इबादत में क्या होता है, वो गुलामी जिसमें जो इंसान मोहब्बत में, मोहब्बत के जज्बे से करे, बंदगी जिसको कहते हैं, आबद से इबादत बनता है ना, आबद गुलाम को कहते हैं। तो गुलामी कोई दो चार घंटे की तो नहीं होती कि मस्जिद में गए तो गुलाम है अल्लाह के, बाजार में गए तो अल्लाह के गुलाम नहीं है, ठीक है, मुसल्ले पे खड़े हुए तो गुलाम है अल्लाह के, बड़े अदब से खड़े हुए, लेकिन शादियों में गए तो गुलामी सारी खत्म, अब मैं किसी और की गुलाम हूं, अब मैं लोगों की गुलाम बन गई, अब मैं ख्वाहिशात की गुलाम बन गई, हम तो बहुत सारों के गुलाम हैं, हमने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, हम तो इसके भी गुलाम, लोगों के भी गुलाम, गैर मुस्लिमों के भी गुलाम हैं, दूसरे कल्चर्स के भी गुलाम हैं, अपनी ख्वाहिशात के भी गुलाम हैं, पता नहीं हमने तो किधर किधर गुलामी की हुई है, हम एक अल्लाह का तो नहीं गुलाम, एक अल्लाह गुलाम ऐसा होता है जिसको उसका भी डर है, ओ बच्चे ना नाराज हो जाए, तो हम तो बच्चों के भी गुलाम है, सीधी बात है, बच्चों के मुंह ना बन जाए कहीं, बच्चों की भी तो ख्वाहिशात है, उनका भी तो दिल है, तो हाँ आप तो बच्चों के भी गुलाम है, शोहर के भी गुलाम है आप, शोहर ना नाराज हो जाए। हमें सब की गुलामी करनी आती है, एक अल्लाह की गुलामी नहीं करनी आती। नहीं, वो हमने सिर्फ रमजान के लिए रखी हुई है, वो हमने सिर्फ मुसल्ले के लिए रखी है, वो जब हम मस्जिद जाते हैं ना फिर हम पूरे अल्लाह के गुलाम बन के जाते हैं, लेकिन बाकी जिंदगी में नहीं, वो अल्लाह की गुलामी नहीं चाहिए, उसमें नहीं अल्लाह के गुलाम बनना हमने, क्योंकि उसमें और हमारे बहुत सारे आका हैं, वो जूते भी हमें मारते हैं ना और बातें भी सुनाते हैं, फिर हम उनकी गुलामी भी करते हैं और वो बातें सुनाते हैं हमें, फिर भी हम उनके गुलाम ही बन के रहते हैं, उनको और राजी करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने राजी नहीं होना। क्योंकि जब इंसान अल्लाह को नाराज करके किसी को राजी करने की कोशिश करता तो वो राजी नहीं होता, अल्लाह उसको भी नाराज कर देता है। इसीलिए फिर हम रोते फिरते हैं बाद में, आए इतना इनके लिए किया और फिर उसके बाद क्या सिला मिला, आए इतना इनको राजी करने की कोशिश की मैंने, तो इनको राजी करने के लिए देखो ये किया, ये फिर भी राजी ना हुए, वो कैसे राजी होंगे, आपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश करनी थी तो तब अल्लाह उनको राजी करता। तो इनकी गुलामी में हम क्या क्या अल्लाह के हुक्म तोड़ते हैं, कभी नोट किया आपने? कहने को हम बहुत तौहीद वाले हैं, कहने को हम बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत दीन वाले हैं, लेकिन कभी हमें देखा करें कि कोई पहचाने भी ना कि ये अल्लाह के गुलाम है जब हम किसी शादी पे होते हैं, कोई पहचाने भी ना कि ये अल्लाह के गुलाम है जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई पहचाने भी ना कि ये अल्लाह के गुलाम है जब हम अपनी मजलिसों के अंदर होते हैं, दोस्तों की महफिलों के अंदर होते हैं, कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये अल्लाह के गुलाम है जब हम अकेले में होते हैं। गुलाम ऐसा नहीं होता, एक अल्लाह की गुलामी में आए और हर गुलामी के तौक को गले से उतार दें खुदा के लिए, ये गुलामियां आपको कुछ नहीं देंगी। ना डर हो जाए हर एक से, मुंह बनते हैं बने, नाराज होते हैं होए, अल्लाह ना नाराज हो, अगर ये एक कायदा रख लेंगे तो जिंदगी बड़ी सुखी हो जाएगी। अल्लाह की खातिर लोगों को नाराज कर दें, लोगों की खातिर कभी अल्लाह को नाराज ना करें, ठीक है? यह असूल एक जिंदगी का बांध ले। अगर ये भी ना सीखा कुरान पढ़ के तो फिर क्या, गुलामी करनी भी ना आई कि मोहब्बत के साथ गुलामी, तो फिर क्या सीखा कुरान से? और मुखलिसीन लहुद्दीन, इखलास इखलास इखलास, इखलास नहीं है तो कुछ नहीं है, इख्तलाफ की वजह भी क्या बनी, इखलास नहीं है ना, अल्लाह के लिए नहीं है, बस अपनी अपनी दुकानें चमकानी है, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स थे सारे उधर चले गए, अब उसको कुछ समझने शुरू हो गए, उसकी तारीफें होने शुरू हो गई, ये अब मुझे कहां बर्दाश्त है, बस मेरे पास सारे आए मेरी तारीफें करें मेरे सामने बैठे बस ये मुझे पसंद है, हमारे फिरके से जुड़ जाए तो सब ठीक है और हमारे फिरके से नहीं है तो बस सब खराब है। सिंसेरिटी, अल्लाह ताला को वही अमल कबूल है जिसमें सिंसेरिटी हो। और देखें यही चीज है जो सबसे जल्दी इंसान के अंदर से जाती है और सबसे जल्दी ये चीज है जो इंसान के लिए यानी जहरे कातिल समझ लें कि इंसान के सारे अमल को जाया करने वाली, क्योंकि ओनली फॉर अल्लाह, लहू नहीं हो पाता ना हमसे, मुखलिसीन लहू दीन, उसके लिए सिर्फ दीन, ओनली ये नहीं हो पाता, और भी आ जाते हैं, अल्लाह के लिए भी है लेकिन औरों के लिए भी है, अपने नफ्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी है, बहुत सारे काम हम सिर्फ अपने आप को अपनी खुशी के लिए करते हैं, उसमें दिल लगता है, मजा आ रहा है उसमें, ये बड़ी वाह वाह हो रही है, उसमें तारीफें बड़ी मिलती हैं, मेहनत करके सब गारत कर दिया, माने समझ लें कि उस वो जो एक हमेशा हम देखते हैं इसके अंदर भी, आपके पास भी आता होगा व्हाट्सएप पे, कि वो बाल्टी के अंदर डाला वो अमल, जो जिस बाल्टी में सुराख है, जिस बैग में सुराख है, उसमें अमल डाला, वो नेकी तो उस सुराख से कब की गिर चुकी है हमें पता ही नहीं, और हम मेहनतें कर करके थक गए, आमिला तो नासिबा, आपने देखा था ना उनकी भी रयाकारी आ गई ना, तो अमल कर करके मेहनतें कर करके थके पड़े होंगे, कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि चाहत में ये था कि दो बोल शुक्रिया के मेरे लिए बोल दिए जाते तो क्या था, आखिर मेरा भी तो दिल है। ठीक है मैंने अप्रिसिएशन के लिए ये नहीं किया, ठीक है अल्लाह के लिए किया, लेकिन अगर ये शुक्रिया कह देते तो क्या था, मेरा नाम भी मेंशन हो जाता तो क्या था। इतनी मुझे तकलीफ होती है जिस वक्त के मुझे ये बताया जाए कि कोई इस चीज को चाह रहा है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। ये मेरे लिए यकीन करें बहुत तकलीफ दे चीज है। किस बात की अप्रिसिएशन? आपको अप्रिसिएशन यहां चाहिए या अल्लाह के यहां चाहिए? नहीं नहीं हमें दोनों जगह ही चाहिए, तो दोनों जगह नहीं मिल सकती, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला अपने साथ किसी शरीक को बर्दाश्त नहीं करता। वो बड़ा गैरत वाला है, वो कहता है जब मेरे शरीक के लिए कुछ किया, अगर उस किसी की शराकत हो गई, चाहे थोड़ी सी हो, अगर किसी की शराकत हो गई तो ये अमल उसी के लिए है, मुझे नहीं चाहिए, जाओ उसके पास ले जाओ। हाँ किसी को अल्लाह ताला यानी उसने उसकी नियत नहीं थी, किसी को पता चल गया उस अमल का और उसके ऊपर उसने अप्रिशिएट कर दिया, इसने ना दिखाया ना चाहा ना कुछ है, तो वो अल्लाह की तरफ से एक होता है। लेकिन खुद ये कहना अप्रिशिएट किया जाए, फलां को अप्रिशिएट किया जाए, इसको अप्रिशिएट किया जाए, हमें अप्रिशिएट किया जाए, क्यों? हमें लोगों को भी ये बताना चाहिए मत ये हिर्स रखो। नहीं भाई हौसला अफजाई होती, हौसला अफजाई क्या याद रखें एक बात, एक क्राइटेरिया लिख लें अपने पास, जी बार बार नहीं आपके सामने आएगा, अगर आपने देखना है ना कि मेरे अंदर कितना इखलास है, कैसे जांचूं, वो मेरे पास कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि जिससे मुझे पता चल जाए, कैसे पता चलेगा मेरे अंदर इखलास है? अगर तो आप अमल में दौड़ते हैं उस वक्त जब आपकी तारीफें हो, जब हौसला अफजाइयां हो, जब लोग थपकी दें कि हाँ तू बड़ा अच्छा कर रही है, तब आप दौड़ने लगे और शौक से करें, समझ लें इखलास नहीं है, समझ लें अल्लाह की खातर नहीं है। और जिस वक्त, दूसरा नंबर टू पॉइंट, जिस वक्त लोगों की बातें बनाने की वजह से, लोगों के उंगलियां उठाने की वजह से, लोगों के आपको कोई कोई नाम देता है, कोई कोई आपको किसी तरह की बातें सुनाता है, कोई हंसता है आपके ऊपर, इस तरह की कोई चीज नेगेटिव आपको मिलती है, कोई आपको बिल्कुल हौसला शिकनी करता है, उल्टा ही होता है, कोई शुक्रिया तो छोड़ें उल्टा ही आपको डांट पड़ती है, आपको उसकी वजह से मुश्किल सहनी पड़ती है, उसकी वजह से अगर आपकी स्पीड स्लो हो रही है, समझ लें इखलास नहीं है। क्योंकि जो अल्लाह की खातिर करने वाला होगा वो उसके लिए तारीफ हो रही है नहीं हो रही, वो ऐसे है जैसे अंधा गूंगा बहरा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जिस वक्त तारीफ हमें दौड़ाए और तारीफ ना होना हमें स्लो करे, समझ जाओ कि ये गड़बड़ है, ये अंदर आ चुका है कोई जहर का कतरा जो कि मेरे सारे अमल को जाया करके रख देगा। समझ लेने की डूब चुकी है, याद रखिए ये बात। और अगर हम इस चीजों की उम्मीदें रखते हैं, हमें अवार्ड दिया जाए, हमारा नाम लिया जाए, हमें स्टेज पे बुलाया जाए, तो हमारे अमल क्या हैं, हमारी 6 साल की मेहनत क्या है? हाँ वो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, फिर उसके बाद अल्लाह के हाँ अगर कुछ भी ना मिला इसका, तो क्या ये वर्थ होगा? लोगों को तो कल तक याद भी नहीं रहना, यकीन करें लोगों का हाफ़ज़ा बड़ा कमजोर होता है, लोगों को याद भी नहीं रहना कि कौन स्टेज पे आया था, किसका नाम आया था, किसका नहीं आया था, वो वहीं से उठ के जाएंगे, उनको नहीं याद होना। और हम कैसे इनके गुलाम हैं कि हमें ये इनकी नजरों में जच जाए, बस हाय किसी को पता ही नहीं चला मैं ये काम करती रही, हाय इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, बाकी सबके नाम ले लिए, मेरा नहीं नाम ले लिया, अगर मैं हूं ना तो मैं इस पे खुश होंगी कि शुक्र है मेरा अमल बच गया, शुक्र है मेरा अमल बच गया। और हमारा हाल ये है कि हम लेके जा रहे हैं रिक्वेस्ट के हाँ हम भाई इनको अप्रिशिएट कर लें, प्लीज इनको अप्रिशिएट कर लें, कहीं नाराज ना हो जाए, हाय कहीं इनके दिल टूट ना जाए। हाँ तो अगर ऐसे दिल थे जिन्होंने इसकी खातिर किया, अप्रिसिएशन तो हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता फिर उस अमल का क्या बनेगा जो इतना फ्लिमजी था, इतना कमजोर था कि वो अप्रिसिएशनों के उस पे खड़ा हुआ था बलबूते, मिली तो फिर वो खड़ा रहा और ना मिली तो गिर गया, तो फिर अल्लाह के हाँ इस अमल की क्या कदरों कीमत होगी और अल्लाह के हमारी क्या वैल्यू होगी। चाहे हम जीपीएल हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम वॉलंटियर हैं, चाहे हम कहीं काम कर रहे हैं, अगर हमें यह है कि जिस वक्त अनाउंसमेंट हो मेरा नाम आए, ये कहीं दिल में भी छुपी हुई एक चाहत है, तो मुखलिसीन अलाउद्दीन तो नहीं हुए, इस कैटेगरी से तो निकल गए। और इखलास है जो खजूर को ओहद पहाड़ के बराबर बना सकता है, ये सिर्फ इखलास है। और इखलास ना होना, आपको पता है हदीस के अंदर है कि बड़े बड़े लोग आमाल लाएंगे लेकिन हबा अमन सूरा बन जाएंगे, वो गर्द बना के उड़ा दिए जाएंगे, गर्द बन जाएंगे, डस्ट। डस्ट की कोई वेट होता है? कोई वेट नहीं होता। सबसे ज्यादा मेहनत करने का जो मैदान है ना, नेकी करना, याद रखें, इतना मुश्किल नहीं होता, इतना मुश्किल नहीं होता, नेकी इंसान कर ही लेता है। अब 6 साल भी गुजार दिए ना, तहज्जुद भी आप पढ़ ही लेंगे। सबसे मुश्किल काम है इखलास पैदा करना, क्योंकि ये चुटकी में निकल जाता है। आज तक इखलास से चलते रहे, जब एंड आया तो वो इखलास कहीं पता नहीं कहां चला गया। अब सारा इखलास खत्म, अब वापस वो पॉइंट जीरो पर आ गए। अब सब कुछ चाहिए, अब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, अब मुझे सब चीजें चाहिए। इखलास तो था जब शुरुआत की थी, वो इखलास पता नहीं कहां गायब हो गया, बीच में पता भी नहीं चला। ये इखलास वो चीज है जो ऐसे उड़ जाता है, और पल भी नहीं लगता, एक पल भी नहीं लगता इंसान की नीयत बदलते हुए, और वो गारत कर बैठता है अपनी सारी मेहनत अपने हाथों से। अल्लाह ताला ने उस औरत की मिसाल दी है ना कुरान में, जो सूत काटती और अपने हाथों से ही उसको सारे को तोड़ फोड़ देती है, खुद ही मेहनत की और खुद ही अपनी मेहनत को आग लगा दी। तो ये जो चीज है इखलास, इखलास और इखलास, सबसे बड़ा मेहनत का ये मैदान है। अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत नेक बन गए, बड़ी नेकियां आप करने लगे, इस पे तवज्जो दें, इखलास कितना मेरे अंदर आया, मैंने कितना पढ़ लिया, मेरे नंबर इतने आ गए, मैं फलाना हो गई, मैंने तो इतने परसेंट मेरी हो गई, और मैं तो हर चीज में नंबर वन हो गई। वो इखलास कहाँ है? सवाल ये, अल्लाह ने ये नहीं देखना कि अमल तुम्हारा क्या, अल्लाह ने देखना इसमें नीयत क्या थी। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, तुम्हारी नीयतों को देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता है। आगे भी इसकी बात आ रही है, हुनफा यकसू होकर, यानी किसी की तरफ भी नहीं मायल, डिवोटेड हो गए। यकसू का मतलब डिवोटेड, अल्लाह के लिए डिवोटेड। वह युकीमुस्सलाता व युतु ज़कात, और इनको यही हुक्म दिया था ना, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और यही दुरुस्त दीन है, ये था दीन। इनको तो बस यही कहा था ना, इनसे ये भी ना हुआ। हम अपना देखें फिर, इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी والمشركين في نار جهنم خالدين فيها, जो काफिर हुए अहले किताब में से भी, यानी उन्होंने ना माना, और मुशरिक भी, वो आग में होंगे जिसमें हमेशा रहेंगे। उलाइका हुम शरुल बरिया, जितनी अल्लाह की मखलूक है इनमें सबसे बदतरीन है ये। इन الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه, बेशक ईमान वाले और ईमान के बाद साले अमल भी साथ हो तो फिर वो बेहतरीन है मखलूक में। अल्लाह ने इतना बड़ा इनको मकाम अता फरमाया, बेस्ट ऑफ ऑल द क्रिएशन है अगर वो ये करते हैं। और अमले साले में भी क्या आता है, उसकी क्या शरायत है, इखलास हो उसके अंदर और सुन्नत के मुताबिक हो, ये दो शरायत होती हैं, तब अमले साले बनता है। ये अमले साले नहीं है, मैं दौड़े लगा रही हूं इधर उधर, मैं बड़ी एफिशिएंट हूं, मैं तो थक रही हूं, टूट रही हूं, और मेरे अमले साले हो रहे हैं देखो अल्लाह के रास्ते में, और इखलास उसमें नाम को नहीं है, किस लिए कर रही हूं, कभी पूछा अपने आप से? दौड़े बहुत लग रही हैं लेकिन ये ना वो आमिला तो नासिबा हो, वो ही जो मेहनतें कर करके थक गए और उसके बाद अंजाम क्या है? इनका होगा फिर अंजाम, जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नात अदन तजरी मिन तहतिहा अलनहारु खालिदीन फीहा अबदा, इनकी जज़ा इंदा रब्बिहिम, इनके रब के पास, जन्नात अदन, जन्नत अदन एक जन्नत का नाम भी है, और हमेश की के बागात, बागात होंगे, जन्नात होंगे, एक जन्नत नहीं है, बहुत सी जन्नतें मिलेंगी। تجری، بہت سے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں گی، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، یہ ری انفورس کرنے کے لیے. خالدینہ میں ہمیشہ رہنے کا معنی ہے لیکن آبادا، نو اینڈ نو بریک. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ تو سب سے بڑی سعادت ہے. اللہ ان کو ایسا راضی کر دے گا، وہاں پہ بھی دنیا میں بھی اللہ سے راضی رہتے تھے، اللہ کے احکامات پہ راضی تھے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھے، اور وہاں پہ بھی اللہ ان کو راضی کر دے گا اور اللہ خود بھی ان سے راضی. ذالک لمن خشی ربا، یہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، غیب میں ڈرتا ہو، تنہائی میں ڈرتا ہو. یہاں تک تلاوت سنیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.